ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान।
कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस वर्ष के रामनवमी महोत्सव पर। कुछ कारणों के वजह से इस वर्ष हम केवल 3 दिन का महोत्सव मना पा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने रामायण से अयोध्या खंड से चर्चा की थी, जिसमें प्रभु श्री राम का वनवास बताया गया है। हालांकि पूर्ण रूपेण हम चर्चा नहीं कर पाए, इसलिए हम उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष की चर्चा भी रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है हम साधकों को जानना भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास। कहा गया है, आदौ राम तपो वनादि गमनम। सबसे पहले यदि हम ये नहीं जानेंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वनवास क्यों लेते हैं, तब तक हम उनकी कृपा की गहराई को नहीं पहचान पाएंगे। और पूरी रामायण का जो मर्म है वो इसी में है, प्रभु श्री राम का वनवास। यदि प्रभु श्री राम का वनवास नहीं हुआ होता तो रामायण वहीं पर खत्म हो गई होती भगवान के राज्याभिषेक के बाद। तो प्रभु श्री राम का विवाह हुआ सीता महारानी से, और उसके पश्चात अयोध्या नगरी में जो समृद्धि छाई उसकी कोई सीमा नहीं थी। रामायण में बताया गया है कि सीताराम स्वयंवर के पश्चात अयोध्या नगरी एक महाआनंद के समुद्र के समान थी, या जिसे कहेंगे रामानंद, राम के आनंद में सभी अयोध्यावासी। और जैसे समुद्र बनता किससे है, नदियों से। जब नदियां समुद्र में जाती हैं तो समुद्र का पानी उन नदियों से बनता है। तो बताया गया है कि अयोध्या की तुलना यदि इस समुद्र से की जाए, राम के आनंद के समुद्र से, तो केवल 2 नदियां इस समुद्र में जा रही थी जो इस समुद्र को उस आनंद के पानी से भर रही थी, रिद्धि और सिद्धि। ये 2 नदियां अर्थात समृद्धि एवं सफलता। तो इन 2 नदियों से अयोध्या का ये राम के आनंद का समुद्र भर रहा था। और केवल हम यदि जो निजी परिवार प्रभु श्री राम का उसकी चर्चा करें तो ही काफी है कि किस प्रकार का आनंद उनमें देखा गया था। सबसे पहले तो दशरथ महाराज ये फूले नहीं समा रहे थे कि ये पिता थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के। बड़े बड़े देवी देवता, ऋषि मुनि, ये सारे प्रभु श्री राम के एक दर्शन के अभिलाषी। और यहां पर दशरथ महाराज रोज श्री राम के साथ बैठकर भोजन लिया करते। कल्पना कीजिए इस व्यक्ति का सौभाग्य कि प्रभु श्री राम के साथ बैठकर रोज भोजन खाते हैं। माता कौशल्या, यहां तक कि कैकेयी, इन सब का सौभाग्य बताया गया है। मंगल भवन अमंगलहारी, कि प्रभु श्री राम ये मंगल के भवन थे और जितनी सारी मंगलमय वस्तुएं या स्थितियां वो अयोध्या नगरी में पाई जा रही थी। और दशरथ महाराज अब इतने आनंदित रोज अपने दरबार में आकर बैठते कि उन्हें दरबार में और कुछ चर्चा करने की अभिलाषा न होती, क्योंकि प्रभु श्री राम के अयोध्या में रहने के पश्चात कोई समस्या तो थी नहीं। राजा दरबार में जाकर क्यों बैठता है? समस्या को सुलझाने के लिए, प्रजा की समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो कोई समस्या ही नहीं होती। तो एक प्रकार से मानो महाराज दशरथ के लिए कुछ काम ही नहीं था करने के लिए। वो आके बैठते, सारे मंत्रीगण आकर बैठते और प्रभु श्री राम के पहले बहुत सी समस्याओं का सामना महाराज दशरथ को करना पड़ता, परंतु अब कोई समस्या नहीं, सारी प्रजा संतुष्ट, सब कोई कौन आक्रमण करेगा अयोध्या नगरी पे, जो जिनके युवराज हैं प्रभु श्री राम और राजा हैं महाराज दशरथ, तो प्रजा से कोई समस्या नहीं, शत्रु पक्ष कोई नहीं, तो फिर करें क्या दरबार में? तो सारे मंत्रीगण महाराज दशरथ को आकर कहते कुछ है नहीं करने के लिए, कोई फाइल नहीं खोली आज जा रही, किसी की कोई समस्या नहीं। तो फिर दशरथ महाराज सारे मंत्रीगण के साथ श्री राम चरित्र इनकी चर्चा करते और फिर रोज पूरे दरबार में केवल प्रभु श्री राम का कीर्तन होता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल प्रभु श्री राम का कीर्तन। एक दिन हुआ कैसा कि महाराज दशरथ वो अपने आप को शीशे में देख रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा आईने में, तो उनके कान के पास के थोड़े से बाल सफेद हो गए थे, ये दिखाई दिया उन्हें। तो अब देखिए, महाराज दशरथ जब अपने बालों को सफेद होता देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? साधारणतः किसी की प्रतिक्रिया क्या होगी कलयुग में? कलयुग में यदि कोई आईने में अपने चेहरे को देखे और कान के बगल के बाल को देखे कि सफेद हो रहे हैं, तुरंत किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर उसे काला करो या डाय लाओ और डाय से उसे काला करो या उसे काट दो, निकाल दो जो सफेद बाल है। तो इस भौतिक संसार में ये सफेद बाल हैं क्या? बुढ़ापे का लक्षण। आजकल तो बाल नहीं उसके, वो भी बुढ़ापे का लक्षण, बाल भी झड़ते जाते हैं चिंता के कारण। और कई लोग इसमें गर्व लेते हैं, बाल सफेद होने में भी गर्व लेते हैं, अरे धूप में नहीं सफेद किए बाल। तो बाल भी सफेद हो गए तो उसमें भी गर्व, हालांकि है क्या कि जरा ये जो बुढ़ापा है ये चारों तरफ से उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले रही है। और कलयुग में बुढ़ापे को छिपाया जा रहा है कृत्रिम तरीके से। यदि गाल में कोई झुर्री आ जाए तो तुरंत उसे किसी कॉस्मेटिक अरेंजमेंट से उसे निकाल दिया जाता है, या ये चमड़ी लटकने लग जाए तो उसे खींचतान कर पीछे यहां वहां कहां घुसेड़ते हैं, उसे कहते हैं फेस लिफ्ट। अरे चाहे कितना भी फेस लिफ्ट कर लो, चार लोग तो लिफ्ट करेंगे एक दिन। बालों को काला कर लेना, दांत नहीं है तो। आजकल ये सारे जो इश्तेहार विज्ञापन हैं, ये है क्या? केवल यही सब बातें कि मैं अभी हाल ही में अमृतसर में था। अब देखिए अमृतसर में, ये अमृतसर पंजाब में, वहां पर एक बड़ा बिलबोर्ड जहां पर एक व्यक्ति जिसका एक भी बाल नहीं, सोचिए पंजाब में ये बिलबोर्ड किस काम का, उसका एक भी बाल नहीं और वो मायूस अपना चेहरा किए हुए और नीचे लिखा हुआ है, यदि आपके बाल इस प्रकार से झड़ रहे हों तो हमारा दादाजी का फॉर्मूला अपनाइए। कोई दादाजी का उनका फॉर्मूला है? अब हमारे हरे कृष्ण भक्त के मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं, वो जब बाल पूरा मुंडवाते हैं तो इतना प्रसन्न चित्त होकर नृत्य करते हैं। और यहां पर जब प्रकृति जब बाल खींचती है तो दुख होता है, जब खुद हम खुद से बाल निकालते हैं तो उसमें इतना दुख नहीं होता। जैसे हमारे एक वक्त एक प्रोग्राम में जा रहे थे बंबई में, तो वो सिग्नल पे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो अचानक सिग्नल चालू हुआ और गाड़ी शुरू हुई, तो गाड़ी को रुकना पड़ा। तो ये भक्त थे, इनके सामने भी एक व्यक्ति जो उसके बाल निकल चुके थे प्रकृति की कृपा से। तो इसने, ये ड्राइवर ने, उसे रुकना पड़ा तो जोर से हॉर्न मारा और चिल्लाया जोर से, ए टकले। अब जो हमारे भक्त थे वो भी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो अच्छी से शेव वगैरह कर जा रहे थे, तो उन्हें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। परंतु ये जो सामने वाला व्यक्ति जो खुद से शेविंग नहीं किया, माया देवी ने शेविंग किया था या जरा ने शेविंग किया था, तो ये क्रोधित आग बबूला, तो मुझे टकला बोलता है, तेरा बाप टकला, खानदान टकला। तो कृत्रिम तरीके से जब इस प्रकृति के ऊपर कोई विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है तो दुख पाता है। तो यहां पर महाराज दशरथ, उन्होंने जब अपने बाल सफेद होते देखे तो महाराज दशरथ तुरंत, उनके मन में एक ही विचार आया कि मेरा समय आ गया है, अब राम को राजपद मिलना चाहिए। देखिए ये एक भक्त का दृष्टिकोण होता है, तुरंत प्रभु श्री राम के, जो भी कुछ हो, बाल सफेद हो या बाल काले हो या बाल न हो, सोचना है प्रभु श्री राम के बारे में। तो महाराज दशरथ तुरंत ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे कहा कि मैं इस इच्छा को रखा हूं कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, तो कोई मंगल दिन ढूंढो। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, मंगल दिन, जिस दिन आप प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करोगे वो मंगल का दिन होगा। अब इस भौतिक संसार में जब कोई इस प्रकार का कार्य करने जाता है तो कोई मंगल दिन ढूंढता है, मंगल मुहूर्त होना चाहिए, मंगल दिन होना चाहिए, मंगल नक्षत्र होने चाहिए, ये सब कुछ मंगल होना चाहिए। इसलिए सब कोई इनविटेशन कार्ड या किसी विवाह के कार्ड पर भी ऊपर लिखते हैं ना, सब मंगलमय हो, और इसलिए हम आपकी मंगल कामना चाहते हैं, ताकि मंगलमय समारोह में मंगल तरीके से इनको आप मंगल आशीर्वाद दीजिए। तो इतना सब कुछ मंगल होने के बाद भी फिर अमंगल हो जाता है इस संसार में। तो यहां पर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं और कौन सा दिन आप मुझसे लेना चाहते हो? अरे प्रभु श्री राम जिस भी दिन जो भी कार्य करे वो मंगल, क्योंकि वो मंगल के भवन है। अरे जो मंगल का भवन है उनके लिए कौन सा मंगलमय दिन मैं ढूंढूं? इसलिए जब हमारे इस्कॉन के भक्ति तीर्थ महाराज, उनका देहांत हुआ जिस दिन, तो वो कोई ऐसा कोई दिन नहीं था, एकादशी या किसी का आविर्भाव तिरोभाव दिवस या कोई कार्तिक का महीना, ऐसा दिन नहीं था, साधारण सा कोई दिन था। तो मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे समझे इतने बड़े सन्यासी प्रभुपाद के, इतने वरिष्ठ शिष्य, और हम ज्यादा कर देखते हैं कि जो बड़े बड़े भक्त होते हैं वो किसी ऐसे शुभ दिन अपना देह छोड़ते हैं या किसी शुभ महीने में, जैसे प्रभुपाद जी ने कार्तिक के महीने में, तो कैसे समझें कि ये किसी साधारण दिन ही अपना देह छोड़े? तो उत्तर में उन्हें बताया गया कि वो जो दिन अपना देह छोड़े वो दिन शुभ हुआ। तो उनका प्रश्न था कि वैष्णव कैलेंडर में किसी दिन वो उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा, तो उत्तर में यह कहा गया कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ा ऐसे दिन ताकि एक और दिन ऐड हो सके वैष्णव कैलेंडर में हमारे लिए, भक्ति तीर्थ महाराज तिरोभाव दिवस, ताकि वो हमारे लिए शुभ बन गया। तो वैसे ही जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि कल ही कर दो राज्याभिषेक, तो महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हुए, और महाराज दशरथ ने फिर अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रीगण और सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण को कहा कि मेरी ये इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल हो जाना चाहिए। अब साधारणतः मंत्री किसी राजा के क्या सोचे, अरे कल ही, कल नहीं हो सकता, पहले हमको नोटिस देना चाहिए था, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे, तैयारियां तो सब इनको ही करनी है। ये इतने प्रसन्नचित हो गए, सारे मंत्री बोले कल क्यों, आज। इसे कहते हैं उत्साह, प्रभु श्री राम की भक्ति का उत्साह हम केवल इन मंत्रियों से सीख सकते हैं अयोध्या के। तो कल, जैसे कि रोज कहते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरा करेगा कब। अब इसका उल्टा क्या लोग बोलते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी भी इतनी जल्दी क्या है जब पड़े हैं बरसों। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, ये हमारा मनोरथ था। कितने समय से हमारा ये मनोरथ था कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना चाहिए, और ये मनोरथ उस पौधे के समान सूख रहा था जिस पौधे को बरसों से किसी ने पानी नहीं डाला। तो आज आपने ये प्रस्ताव हमारे सामने रख कर हमारे इस मनोरथ रूपी पौधे पर वर्षा की है, केवल पानी नहीं डाला। तो इतने ज्यादा ये प्रसन्न हो गए और ये कहे कि आज ही, कल क्यों, आज ही करते हैं अभिषेक। परंतु ये भूल गए कि भरत महाराज वो अपने ननिहाल में थे, वो नहीं थे। तो वशिष्ठ मुनि अब उन सबको कहने लगे कि क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, कौन कौन से द्रव्य, गंगा जल, शुद्ध जल, आचमन इत्यादि क्या क्या द्रव्य और होने चाहिए, और जैसे वशिष्ठ मुनि बोल रहे थे तैयारियां साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड शुरू हो गई। जैसे वशिष्ठ मुनि कुछ कहते तैयारी करने के लिए, वो उनके कहने से पहले वो हो जाती पूरी तैयारी। इतना उत्साह इन अयोध्या वासियों में। और ये वशिष्ठ मुनि को बार बार कह रहे थे कि आप बोलते जाइए क्या क्या तैयारियां करनी है। और जैसे बोलते जा रहे थे तैयारियां होती जा रही थी। तो वशिष्ठ मुनि थोड़ा घबरा रहे थे कि मैं इतने एक दिन में कैसे होगा इनसे, परंतु ये आश्वासन दे रहे थे कि नहीं, ये हो गया। और वहां पर प्रभु श्री राम और सीता, जब इन्होंने देखा कि ये अचानक अयोध्या नगरी में इतनी सारी तैयारियां कैसे चल रही हैं, सभी यहां वहां उत्सुकता से दौड़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो अब सीता से देखिए प्रभु श्री राम क्या कहते हैं। ऐसा नहीं कि अब सीता से कहे कि शायद कुछ मेरे लिए ही चल रहा होगा, अयोध्या में और किसके लिए क्या चलेगा, मेरे लिए ही तो चल रहा होगा। परंतु प्रभु श्री राम की नम्रता और उनकी निस्पृहता देखिए। प्रभु श्री राम सीता से कहते हैं, ये शायद भरत आ रहा है अपने नैनीहाल से, तो उसके स्वागत की तैयारियां चल रही। ये प्रभु श्री राम का दृष्टिकोण। इससे हम क्या सीखते हैं? निस्वार्थ भावना, कि प्रभु श्री राम कभी भी अपने स्वयं के स्वार्थ के विषय में बिल्कुल नहीं सोचते, हर समय दूसरों के। तो ये स्वाभाविक दृष्टिकोण प्रभु श्री राम का, कि शायद भरत के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। तो माता कौशल्या ब्राह्मणों को बुलाकर दान देना शुरू की, माता सुमित्रा, यहां तक कि कैकेयी, ये सभी तैयारियों में लग गए प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक। अब महाराज दशरथ ने सोचा कि मैं जाकर ये शुभ समाचार राम को नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैं जाकर कहूं तो हो सकता है कि राम मना कर दे, क्योंकि दशरथ महाराज जानते थे कि प्रभु श्री राम ये सब राजबाट इस सब में इतना ज्यादा रुचि नहीं लेते। तो वशिष्ठ मुनि को कहा कि आप जाओ, आप गुरु हो और गुरु की आज्ञा शिष्य कभी नहीं टाल सकता। तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं तो प्रभु श्री राम उनका स्वागत करते हैं। 16 षोडश उपचार से, आसन स्वागतम, अर्घ्यम, पद्यम, ये सब जो षोडश उपचार हैं उससे स्वागत करते हैं वशिष्ठ मुनि का। और जब वशिष्ठ मुनि ये समाचार सुनाते हैं कि राम तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने जाने वाला है, अब देखिए ये समाचार सुनकर कोई साधारण व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी। और प्रभु श्री राम मायूस हो गए जब उन्होंने सुना। वो मायूस क्यों हुए? उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे गुरुवर, हम जन्मे एक साथ, हम चारों भाई एक साथ जन्मे, हम एक साथ भोजन लेते हैं, हम एक साथ बड़े हुए, हमारा कर्ण भेद एक साथ हुआ, उपनयन एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, परंतु ये राज्याभिषेक केवल मेरा ही क्यों? देखिए ये प्रभु श्री राम का एक एक पद पर हमें देखना है, सीखना क्या है कि हमें अपने जीवन में कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। यहां देखिए प्रभु श्री राम कैसा दृष्टिकोण रखे हैं कि ये समाचार सुनने के पश्चात भी उनकी ये इच्छा नहीं स्वाभाविक रूप से। हां, यदि आज्ञा है तो आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु यदि मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा जा रहा है तो निजी रूप से मैं इस राजपद को नहीं लेना चाहता, अकेले नहीं लेना चाहता। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि प्रभु श्री राम की ये जो निस्पृहता है, ये जो वैराग्य है प्रभु श्री राम का, ये हमारे जो कलयुग वासियों के जो कुटिल हृदय है उसको नरमाता है। तो इसलिए प्रभु श्री राम पूजनीय है, ऐसा आदर्श स्थापित उन्होंने किया अपने हर एक कार्य में। और अयोध्यावासी, यहां पर अयोध्यावासी इतने व्यस्त थे कि उस शाम को, उस रात्रि को अयोध्यावासी कोई प्रभु श्री राम की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि सब सेवा में लगे थे। साधारणतः शाम के समय सभी प्रभु श्री राम के कक्ष में आते और मिलते और चर्चा होती। किसकी चर्चा होती? भगवत चर्चा। और वो भगवत है कौन? वही। तो भगवान के साथ बैठकर उन्हीं की चर्चा, सोचिए क्या सौभाग्य अयोध्यावासियों का। परंतु उस संध्या को कोई नहीं आया, सभी व्यस्त थे। तो क्या दिखा रहे थे कि प्रभु श्री राम की सेवा उनके साथ बैठने से ज्यादा जरूरी है। प्रभु श्री राम के सानिध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु श्री राम की सेवा। तो यहां पर उत्साह और उत्सव, ये दोनों देखा जा रहा था अयोध्या नगरी में। परंतु देवतागण इन सब को जब देख रहे थे, अयोध्या वासियों को उत्सव में लगे हुए, उत्साह से लगे हुए, तो देवतागण वो दुखी हो गए। अब आप लोग ये प्रश्न पूछ रहे होंगे कि भाई देवतागण क्यों दुखी हो गए? वो तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उन्हें तो वो भी, उन्हें भी आकर लग जाना चाहिए था, कुछ माला बनाने में, कुछ भोग बनाने में, अभिषेक की तैयारी करने में, वो दुखी क्यों हुए? उदाहरण दिया जाता है कि जैसे चांदनी रात को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं कि नहीं, पूर्णिमा की रात हो, पूरा चांद हो ऊपर आकाशमंडल पर, तो पूर्ण चंद्र को देखकर, पूर्ण चंद्र की चांदनी को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। अक्सर गर्मियों में देखा जाता है लोग छत पर जाकर बैठते हैं, रात को छत पर सोते हैं चांदनी रात में, या खीर बनाते हैं या कुछ मिठाई बनाते हैं, उसको चांदनी रात में ठंडा करते हैं। तो एक किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी ले ले, उसमें देखें तो चांदनी रात को देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, परंतु एक व्यक्ति है जो दुखी होता है। कौन? चोर। चोर दुखी हो जाता है चांदनी रात में, क्योंकि चोर प्रसन्न कौन सी रात में होता है? अमावस्या की। क्यों? क्योंकि अंधेरी रात में ही तो वो अपना व्यवसाय चला पाएगा। तो यहां पर प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक हो रहा है या उसकी तैयारियां जो हो रही हैं, वो चांदनी रात के समान है, जो सब अयोध्या वासियों को प्रसन्न चित्त कर रही है, परंतु ये देवतागण दुखी हो रहे हैं, जैसे कि चोर दुखी हो जाता है चांदनी रात में। तब ये दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका भी बहुत विशेष कारण है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि यहां पर तो सब मंगलमय अच्छा चल रहा है, अरे यदि ये पिक्चर ऐसे ही अच्छी चलती रहे तो फिर मजा क्या आएगा, थोड़ा अलग होना चाहिए ना, कुछ विलन बीच में आना चाहिए, और तब जाकर ये जो प्रभु श्री राम ने जो अपना ये वृत्तांत स्थापित किया है वो पूरा हो, या हम जिस कारण के वजह से प्रभु श्री राम को चाहते थे इस धरातल पर वो पूरा हो। यदि ये सब कुशल मंगल चलता रहेगा तो ये रावण को और इत्यादियों को कौन मारेगा? तो फूट डालने के लिए तो इन्होंने किया क्या कि ये सारे देवतागण, इन्होंने जो आत्यंतिक सुख है उसको देखा, तात्कालिक सुख को नहीं। अयोध्यावासी तात्कालिक सुख को देख रहे थे परंतु देवतागण आत्यंतिक सुख को देख रहे थे। अयोध्यावासी केवल देख रहे थे कि अयोध्या का सुख, परंतु देवतागण देख रहे थे पूरी पृथ्वी का सुख। इसलिए प्रभु श्री राम को अयोध्या छोड़ना होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि एक जो प्रचारक है वो प्रचारक को घूमते रहना चाहिए, तब जाकर, जैसे प्रभु श्री राम वो यदि केवल अयोध्या में रहते तो केवल अयोध्या वासियों को ही उनका लाभ मिलता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक प्रचारक को घूमते रहना चाहिए ताकि वो प्रभु श्री राम का प्रचार सब तक पहुंचा सके और सबको उसका लाभ मिल सके। तो यहां पर वो आत्यंतिक सुख को देख रहे थे, तात्कालिक सुख को नहीं। कौन? देवतागण। इसलिए उन्होंने मीटिंग बिठाई, इष्ट गोष्ठी। और मीटिंग इसलिए कि ये राज्याभिषेक को कैसे रोका जाए। अब साधारणतः ये मीटिंग तो राक्षसों को बिठानी चाहिए थी, तो हम ये अब तर्क लगा सकते हैं कि राक्षसों ने भी मीटिंग बिठाई होगी कैसे ये राज्याभिषेक हो। क्योंकि यदि राज्याभिषेक होगा तो रामचंद्र जी अयोध्या में ही रहेंगे, अयोध्या में ही रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, जो हमारे सरदार हैं रावण वो जीवित रहेंगे। परंतु यहां पर देखिए, बाहरी दृष्टिकोण से ये दिखता है कि देवतागण मीटिंग बिठा रहे हैं राज्याभिषेक रोकने के लिए, राक्षस मीटिंग बिठा रहे हैं राज्याभिषेक होने के लिए। तो दोनों का मनोभाव जानना होगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत पद्धति में हम जब किसी क्रिया को देखें या किसी व्यक्ति को देखें तो केवल क्रिया और व्यक्ति को बाहरी रूप से देखते ही किसी निष्कर्ष पर नहीं आ जाना चाहिए। जैसे देवतागण का मनोभाव प्रभु श्री राम के आंदोलन के सक्रिय था, परंतु राक्षसों का जो मनोभाव वो उनके विरुद्ध था। तब उन्होंने किया क्या देवतागण, उन्होंने माता सरस्वती को बुलाया और माता सरस्वती को मीटिंग में बुलाकर, माता सरस्वती जान गई कि ये देवता क्यों बुला रहे हैं, कि माता सरस्वती अयोध्या नगरी में जाए और किसी की जीवा पर बैठकर ये राज्याभिषेक रोके। और वो कैसे करे वो माता सरस्वती का काम, उनका डिपार्टमेंट। तो माता सरस्वती समझ गई कि भाई मैं खुद जा रही थी भाग लेने के लिए मेरे स्वामी श्री राम के राज्याभिषेक में, और यहां पर अब ये लोग मुझे भेज रहे हैं सब कुछ उल्टा करने के लिए वहां पर। तो माता सरस्वती फिर अपने आप को कोसने लगी, पहले तो मैं क्यों ये स्पीच का मिनिस्टर बनी कि ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। परंतु सारे देवताओं ने आश्वासन दिया माता सरस्वती को कि देखो, हालांकि जाकर तुम कुछ गलत करोगी बाहरी रूप से, परंतु वो प्रभु श्री राम की योजना के अनुसार होने वाला, और प्रभु श्री राम वो कोई जीव नहीं है, तो बिल्कुल भी उन पर कोई प्रभाव या असर नहीं पड़ने वाला तुम्हारे किसी भी कार्य का। परंतु माता सरस्वती सोचने लगी, जो कुछ भी है उनकी योजना के अनुसार, परंतु फिर भी लोग तो मुझे ही गाली देंगे, तो माता सरस्वती उन्होंने कहा कि तुम देवता लोग हालांकि बहुत ऊंचा जीवन जीते हो, परंतु तुम्हारे विचार से तुच्छ, ऊंचा जीवन तुच्छ विचार। अरे सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए, तुम्हारा ऊंचा जीवन है और ऊंचे विचार होने चाहिए, जैसे ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। यदि उसको कोई देखे तो किसी को लगेगा कि अरे भाई हो सकता है कि कोई बहुत ऊंचे लोग होंगे और उनकी बहुत ऊंची पसंद होगी, गुटका बस। तो कैसे ऊंचे लोग और क्या पसंद है इनकी। तो वैसे ही माता सरस्वती सोचने लगी कि ये देवतागण इतने ऊंचे पद पर रहते हैं, इतने ऊंचे लोकों पे रहते हैं, परंतु विचार देखो कितने तुच्छ हैं। वो गिद्ध के समान ऊंचा उड़ता है, परंतु दृष्टि कहां रहती है, कहां कोई मृत शरीर गिरा हुआ, वहीं पे दृष्टि उसी को ढूंढता रहता है वो गिद्ध। तो ये सारे देवता गिद्ध के समान। परंतु फिर रास्ते में जाते जाते माता सरस्वती सोचने लगी कि हालांकि मैं जा रही हूं वहां पर अपयश की पिटारी बनी हुई, वहां पर अपयश फैलाने के लिए, परंतु जो मैं करूंगी उससे प्रभु श्री राम को वनवास मिलेगा, और प्रभु श्री राम को वनवास मिलेगा तो प्रभु श्री राम नासिक आएंगे, और जब वो नासिक आएंगे तो यहां पर ये धाम बनेगा। ये नासिक धाम बना क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम को वनवास मिला, नहीं तो केवल एक ही धाम होता, अयोध्या। अब कौन कौन से धाम हो गए देखिए, चित्रकूट, नासिक, पंचवटी और ताकेद, रामेश्वरम, जहां जहां पर प्रभु श्री राम गए इतना सब धाम बन गया। तो माता सरस्वती सोच रही थी कि प्रभु श्री राम यहां पर सब विचरण करेंगे और यहां के सारे ऋषि मुनि प्रभु श्री राम की चर्चा करेंगे, उनकी कथा होगी, और जब जब उनकी कथा होगी तो उनकी जीवा पर मुझे ही विराजमान किया जाएगा। तो जब भी प्रभु श्री राम की जहां कहीं पर भी कथा होती है माता सरस्वती वहां पर उपस्थित रहती है। तो माता सरस्वती अब ताली पीट पीट कर इनको धन्यवाद दे रही थी, ये वास्तविक रूप में मेरे हित चिंतक हैं। कौन? ये सारे देवतागण। हाँ, ऊंचा जीवन है और ऊंचा विचार इनका, तो उनको धन्यवाद दे रही। और फिर माता सरस्वती ने अब देखा कि अयोध्या में कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसको माता सरस्वती पकड़कर वो उसके वाक्यों को अपशब्द बनाकर इस राज्याभिषेक में बाधा लाए, खेद उत्पन्न करे। केवल एक ही व्यक्ति, वो मंथरा। अब ये मंथरा ये ऐसी स्त्री थी कि इस ये न केवल कुबड़ी थी बल्कि कुजाती और कुमति, इसकी मति कुमति थी, जाति कुजाति थी और कुबड़ी, ये मंथरा। अब मंथरा के विषय में बताया गया है कि मंथरा को कोई जानता नहीं था अयोध्या में, थोड़ा बहुत केवल कैकेयी जानती थी और कोई जानता नहीं था इस मंथरा को। इसलिए जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ तो सभी अयोध्यावासी पूछ, अचानक ये वनवास क्यों? तो कैकेयी ने ये दो वर मांगे। अरे तो कैकेयी हुआ क्या अचानक, ये क्या दो वर मांगे? इतना प्रेम करती है प्रभु श्री राम से, कौशल्या से ज्यादा प्रेम करती कैकेयी, ये अचानक इसकी मति किसने फेरी? तो ये कहां से शुरू हुआ, किसने मति फेरी, ये सब जब अयोध्यावासी चर्चा कर रहे थे तो अंततः मंथरा, ये है कौन मंथरा, सभी पूछने लगे, तो पहली बार नाम सुन रहे हैं हम। ये उसका रिकॉर्ड था अयोध्या। तो सभी पूछने लगे कहां इसका आई कार्ड बताओ इसका, कोई राशन कार्ड नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कैसे किसने एंट्री दिया इसको अयोध्या। तो कोई जानता नहीं था इस मंथरा को, इसलिए माता सरस्वती ने इस मंथरा को चुना और उसे उसकी मति फेरी। तो एक दृष्टिकोण से ये मंथरा की भी कोई गलती नहीं, तो कोई कहे किसकी गलती, माता सरस्वती की, उनकी भी गलती नहीं, किसकी गलती, देवताओं की, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा उनको। तो इसलिए, और प्रभु श्री राम तो गलती करते नहीं। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने सारी लीला रचाई हमें शिक्षा देने के लिए, कि हम क्या शिक्षा लेते हैं कि कैकेयी ने जब मंथरा का संग किया, उस मंथरा का जिसकी मति मारी गई थी, तो हम ये सीख लेते हैं कि कैकेयी ने मंथरा का जो मंत्रगण था अर्थात एडवाइस, वो सुना जब वो मंथरा की मति मारी गई थी। इसलिए ये बताया जाता है कि जब भक्त समुदाय में भी जब किसी व्यक्ति की मति मारी जाती है तो उससे दूर रहना चाहिए। हालांकि बाहरी रूप में वो व्यक्ति भक्त दिखाई दे, परंतु यदि पता लग जाए कि इसकी मति मारी गई है किसी कारणवश, तो कैकेयी के समान फिर उसका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कैकेयी जैसी प्रेमल माता जो प्रभु श्री राम की भी उसके दुश्मन बन सकती है, उसके शत्रु बन सकती है। यह हम सीख लेते हैं कैकेयी और मंथरा के उदाहरण से। अब यहां पर हमने इसकी पिछले वर्ष भी चर्चा की थी कि फिर कैकेयी ने क्या क्या किया, अपने दो वर मांगे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ देखिए, हालांकि उन्होंने वो दो वर कैकेयी को दिए थे, परंतु महाराज दशरथ के विषय में भी कहा गया था कि यदि अपनी पत्नी को भी वर देना हो तो सोच समझ के देना चाहिए। कि यहां तक कि महाराज दशरथ ने ऐसी गलती कर दी कि उसे खुला वर दे दिया, जब भी मांगना हो, जो भी मांगना हो। तो जब कैकेयी ने बुलाया महाराज दशरथ को और कोप भवन में गुस्से में, अब कोप पूरा दिखाते हुए, तो महाराज दशरथ, अब देखिए वहां पर भी जब कैकेयी ने कहा कि ये दो वर याद है, वो दो वर, तो महाराज दशरथ पहले से इतने प्रसन्न चित, अब कल राज्याभिषेक होने वाला है उनके प्रभु श्री राम का, और सबसे जो प्रिय रानी उनकी कैकेयी गुस्से में वर मांग रही, तो उन्होंने कहा दो क्या, चार मांगो, ये कह दिया। और तुम इतने क्रोध में क्यों, तुम कहो तो किसी राजा को रंक बना दू, रंक को राजा बना दू। देखिए अब ये नहीं जान रहे कि वो जब मांगेगी तो यहां पर तुम जो राजा हो और जो जिसे राजा बनाना चाहते हो सारे रंक बनने वाले हैं। तो महाराज दशरथ के विषय में बताया गया है कि वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सोच समझ कर किसी व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए, कि हालांकि महाराज दशरथ ने विश्वास किया किस पर, जो उनके सबसे निकटतम उनकी पटरानी कैकेयी पर विश्वास किया। और विशेष रूप से इस कलयुग में देखा जाता है कि आप जिसे आपका सबसे निकट का सदस्य मानो, परिवार का या कोई मित्र है जो भी, उस पर यदि आप इस प्रकार का विश्वास, विश्वास केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूपेण हमें रखना है और वो है प्रभु श्री राम के ऊपर। इसलिए श्रील प्रभुपाद को भी उनके एक शिष्य ने एक बार ये कहा, श्रील प्रभुपाद मैं अपना पूरा जीवन केवल आप ही की सेवा में देना चाहता हूं। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में कहा, नो आई मे बिट्रे यू, डोंट पुट फेथ इन मी। तुम्हारा पूरा विश्वास भगवान पर होना चाहिए, उन पर अपना पूरा विश्वास रखो, क्योंकि इस भौतिक संसार में, ये बात ध्यान में रखिए, ये उदाहरण है महाराज दशरथ और कैकेयी, जो कि प्रभु श्री राम के माता पिता बने, कि उन्होंने जब कैकेयी पर विश्वास रखा और कैकेयी ने जो इतने ज्यादा विश्वासु महाराज दशरथ की, उसने विश्वासघात किया। हालांकि कैकेयी भी वो फेर में आ गई थी मंथरा के शब्दों में, जो कि मंथरा के भी शब्द नहीं थे, सरस्वती। अब अचानक कैकेयी सोचने लगी कि ये मंथरा के शब्दों में इतने जादू कैसे हो आ गया, क्योंकि वो मंथरा के शब्द नहीं, वो माता सरस्वती के शब्द थे। इसलिए कलयुग में मूर्तिमान कली ये सभी के जिह्वा पर बैठकर सभी को मंत्रमुग्ध करता है। और जैसे कोई जादू का खेल देख रहा हो, हम वहां पर एक जगह पर गए थे, उसे कहते हैं रंगला पंजाब, वो जलंधर में है पंजाब में, उसे कहते हैं रंगला पंजाब। हालांकि इतना लेट हो गया था वहां पे, हमें रात के 1 बज गए, तो हम सब बंबई वाले वहां पर गए हुए, तो वहां के सारे जो भक्त, पंजाबी भक्त, वो हमें देखे कि सबकी हालत हो रही थी। तो एक भक्त हमसे पूछे कि कैसा लगा रंगला पंजाब, मुझे आधे नींद में था मैं, रात का 1 बज रहा है, तो आज आंख थोड़ी खोल के, बहुत अच्छा था बहुत। तो फिर वो बस में थे हम करीब 25-30 भक्त, तो सबको देख रहे थे, कोई ऐसे यहां गिर रहा था, कोई वहां गिर रहा था। तो मैंने कहा आपका रंगला पंजाब बहुत अच्छा था, ये सोयला बंबई कैसा लग रहा है। वहां पर वो सब ये जादू का खेल, मदारी का खेल, जो भी कुछ ये सब दिखा रहे थे, तो एक वो जादूगर अपना सब दिखा रहा था तरकीबें, तो उसमें कहीं से कुछ निकालना, कहीं से कुछ गायब कर देना, तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। खाली टोकरी से कोई कबूतर बाहर आ रहा है, फिर दूसरी टोकरी से 2-3 कबूतर बाहर आ रहे हैं, फिर गायब हो जा रहे हैं, उसके मुंह से कोई लोहे के गोले बाहर आ रहे हैं, कंचे यहां से बाहर आ रहे हैं। तो जब किसी जादूगर के खेल को हम देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसे आश्चर्यचकित हो गए, ये कहां से क्या निकालता है, कैसे गायब करता है। वृंदावन में एक जादूगर आया था कृष्णमल राम मंदिर में, तो वो इस प्रकार से जादू दिखा रहा था, तो सारे भक्त बैठकर देख रहे थे, तो प्रभुपाद को भी बुलाया गया, प्रभुपाद भी देख रहे, प्रभुपाद भी हंस रहे थे। तो उसने किया क्या कि प्रभुपाद के सामने अपने हथेली में एक सिक्का लिया और उसे गायब किया, फिर प्रभुपाद के हथेली में सिक्का दिया और फिर प्रभुपाद के हथेली से सिक्का गायब करवा दिया। तो अभी सभी देखना है, तो प्रभुपाद को भी अपने जादू के खेल में एक माध्यम बना रहा है, तो उन्हें वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। प्रभुपाद हंसने लगे, फिर उसने ये सब जो ले आना, फिर गायब कर देना, ये सब जो कर रहा था। प्रभुपाद ने फिर अंत में पूछा, क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि गायब कर सकते हो? तो उसने कहा, नहीं वो मैं नहीं गायब कर सकता। प्रभुपाद ने कहा, मैं कर सकता हूं। तो कौन बड़ा जादूगर हुआ? तो फिर सब मान, जय प्रभुपाद। तो उसी प्रकार से यहां पर कई कई के ऊपर एक प्रकार का जादू सा छा गया था उस मंत्रा और सरस्वती के वाक्यों का। जैसे एक गांव में एक मंथरा जैसी कुलटा स्त्री, वो गई और उस गांव में एक दंपति बहुत प्रसिद्ध थे, पति पत्नी बहुत प्रसिद्ध थे वो आपस में उनके प्रेम के कारण, कि जिसका भी विवाह होता तो सभी कहते, देखो इन दोनों का आशीर्वाद लेकर आओ पहले। इतने वर्षों से इन्होंने एक खिताब हासिल किया था कि एक दिन भी अपशब्द या कोई क्रोध का आदान प्रदान कभी कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तब ये स्त्री ने, मंथरा जैसी, इसने जाकर किया क्या कि पहले जो पत्नी थी उसे कह दिया कि मैंने तुम्हारे पति का भूत और भविष्य देखा है, तो तुम्हारे जो पति हैं उनके अंदर नमक की प्रधानता है, नमक बहुत है उनके अंदर, और इसलिए वो भविष्य में गल रहे हैं, वो धीरे धीरे गल रहे हैं, वो नमक बहुत है तो नमक उनको गला रहा है, तो सावधान रहना। और पति को जाकर कहा इसने कि तुम्हारी जो पत्नी है ना, वो पिछले जन्म में नरभक्षी राक्षसी थी और अभी भी कुछ उसकी आदतें वैसी ही हैं, वो भूली नहीं है अपने पिछले जन्म की आदतें, अभी भी उसकी आदतें हैं थोड़ी, कभी टेस्ट लग गया तो कुछ भी कर सकती है। ये भी ये थोड़ा डर गया। तो अब एक रात को हुआ क्या कि ये पत्नी पैर दबा रही थी अपने पति का, तो पैर दबाते दबाते इसे याद आया कि उसने कहा था मेरे पति में नमक की प्रधानता है, तो थोड़ा चख के देखती हूं नमक है क्या, क्या है। तो अब वो अचानक ये पैर कैसे चाटने लग जाऊं, तो प्रयास कर रही थी धीरे धीरे ऐसे थोड़ा लगा के जीभ पे लगा के, तो ये पति ने देखी, पति को ध्यान में आया, उसने कहा था ये नरभक्षी है। तो फिर अब थोड़ा तो पसीना जो आता है, थोड़ा तो नमक उसमें से आता है शरीर से बाहर, तो थोड़ा सा अभी इसको पसीना पसीना होने लगे, ये नरभक्षी पैर से शुरुआत कर रही है खाने को, तो थोड़ा पसीना आया तो नमक की प्रधानता हुई थोड़ी सी, तो अब ये उसे विश्वास हो गया, तो उसने अब और चखना चाहा, तो जैसे उसने अपना मुंह नीचे किया चखने के लिए, तो ये अरे खाएगी, ये तो नरभक्षी है, वो भागा वहां से। उसके बाद में फिर खत्म। तो उसी प्रकार से ये मंथरा, ये मंथरा ने कैकेयी और दशरथ के बीच में फूट डाली इस तरीके से। अब जब प्रभु श्री राम को यह समाचार सुनाया गया, तो प्रभु श्री राम की प्रतिक्रिया देखिए। हमने देखा कि जब उनके राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो सोच रहे थे भरत का स्वागत की तैयारियां हो रही। जब उन्हें बताया गया कि आपका राज्याभिषेक है कल, तो दुखी हुए कि मेरे अकेले का क्यों। अब देखिए, जब उनको यह बताया जाएगा कि आपका राज्य अभिषेक नहीं है, इसके बदले आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा, तो इनकी प्रतिक्रिया देखिए प्रभु श्री राम की। तो जब अब वो कोप भवन में महाराज दशरथ गिरे पड़े मूर्छित अवस्था में, जब उन्होंने ये सुना, तो प्रभु श्री राम को जब सुमंत्र जी बुलाते हैं, तो सबसे पहले तो सुबह सुबह प्रभु श्री राम को बुलाया गया। तो अब प्रभु श्री राम बिना किसी पादुका को पहने, नंगे पैर, तो अयोध्यावासी ये देखकर थोड़े विस्मित हुए कि ये हमारे आज राजा अभिषेक इनका होने वाला है, नंगे पैर क्यों जा रहे हैं। तो वो गए, और जब कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की ये इच्छा है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक न हो, थोड़ा कठोरता से कैकेयी ने कहा कि तुम्हारा राज्य अभिषेक नहीं होना चाहिए और 14 वर्ष का वनवास तुम्हें मिलना चाहिए। तो तुरंत ये कहे प्रभु श्री राम, इतनी सी बात, देखिए इतनी सी बात के लिए आप इतनी सुबह सुबह क्यों तकलीफ दी, और आप ये समाचार किसी के द्वारा भिजवा सकते थे कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, मैं आऊं इतनी दूर, मैं वहीं से चला जाता। ये देखिए प्रभु श्री राम की प्रतिक्रिया। तो वो कैकेयी से कहते हैं कि मैं वास्तविक रूप में हे माते आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सोच रहा था कि अभी अभी मेरा विवाह हुआ है और सीता के साथ मैं ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूं, और राजा बन जाऊंगा तो बिल्कुल समय नहीं बिता पाऊंगा, तो आपने मेरे और सीता के एक साथ रहने का प्रबंध किया है, वो भी 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष का हनीमून। देखिए भगवान भी जब जाते हैं हनीमून के लिए तो 14 वर्ष के लिए, कोई है इस संसार में? और फिर वो कैकेयी से कहते हैं कि वास्तविक रूप में इस पूरी अयोध्या नगरी में केवल आप ही मेरे हित चिंतक हो। देखो कैसे, तो कैकेयी क्यों, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो जंगल में कौन रहते हैं, ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत, वो जंगल में रहते हैं, और उनका सबका 14 वर्ष तक सत्संग मिलेगा हमें। यदि मैं राजा बनकर तो केवल समस्याओं को जूझता, केवल राज का कारभार संभालना, पैसे ऐश्वर्य इनके अंदर, परंतु केवल सत्संग अब जंगल में, जो व्यक्ति किसी का हित चिंतक है वही किसी को सत्संग में लाता है ना। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जो आपको यहां पर सत्संग में लाए उसको आप कहो कि आप में और कैकेयी में कोई अंतर नहीं, हालांकि एक दृष्टिकोण से यदि इस मुद्दे को हम लें तो कोई अंतर नहीं, परंतु आपको जाके ये कहना नहीं चाहिए, नहीं तो उल्टा कोई ले लेगा, कहीं ये क्या, क्योंकि एक दृष्टिकोण से कैकेयी ने किया क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संग प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण को मिला, तो इसलिए वो कैकेयी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप पूरे अयोध्या में केवल आप ही मेरे हित चिंतक हो। और महाराज दशरथ अब अपने आप को कोस रहे कि मैंने किस मनहूस घड़ी में इस कैकेयी के साथ विवाह किया, और प्रभु श्री राम की उदारता को देखते हुए तो और महाराज दशरथ ने प्रभु श्री राम को कहा कि राम मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो और आक्रमण कर कर ये राज्य ले लो। ठीक है, मैंने इसे वर दिया, इस कैकेयी को मैंने वर दिया और मैं उस वर को पूरा करते हुए तुम्हें वनवास भेज रहा हूं, परंतु अभी तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो, मुझे हराओ, मुझे मार डालो और राज्य ले लो। सोचिए, क्या प्रभु श्री राम करने वाले थे? यहां वो धन्यवाद दे रहे हैं कैकेयी को, कैकेयी को कहते हैं कि इतनी तकलीफ आपको क्यों लेनी, इतनी सी बात थी। जैसे मान लो कि कोई घर में किसी को कहे कि जाकर एक पानी का ग्लास लेकर आओ या बाजार से कुछ सब्जी लेकर आओ, तो प्रभु श्री राम के लिए वो वैसा ही था, 14 वर्ष वनवास। अब कलयुग में किसी को कहो कि जाकर पानी का ग्लास लाओ तो उसे वो 14 वर्ष का वनवास लग जाता है, और यहां पर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास एक पानी के ग्लास के लाने के समान था। ये है इनकी निष्प्रहता, ये है प्रभु श्री राम का बड़प्पन, उनकी उदारता, उनका वैराग्य। तो अब प्रभु श्री राम वो अप्रसन्नचित हुए, पहले मायूस थे, अब जब वो फिर से अपने कक्ष में जा रहे हैं तो आते समय, यहां पर भी वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आते समय जब प्रभु श्री राम ने सारे तैयारियां देखी तो बिल्कुल प्रभावित नहीं, अप्रभावित रहे। ये नहीं कि देखते हुए हां ये थोड़ा ठीक से लगाओ पंडाल, ये ऐसा नहीं, अप्रभावित रहे। और जब वापस अब जा रहे हैं अपने कक्ष में ये सुनने के लिए, ये सुनने के पश्चात कि राज्याभिषेक तो दूर की बात है, अब तो 14 वर्ष वनवास में जाना होगा, ये समाचार सुनने के पश्चात भी प्रभु श्री राम वैसे ही थे। ऐसा नहीं कि अब इन तैयारियों को देखकर जाकर उनसे कहे कि जाओ घर पे, क्या है फालतू लगा रखा है, कुछ मालूम नहीं, अभी पता लगेगा तो फिर रोगे यहां पे। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि अब वो ज्यादा खुश हुए कि ये सारी तैयारियां जो मैं सोच रहा था उसके लिए होगी। किसके लिए? भरत के लिए। ज्यादा खुश हुए प्रभु श्री राम, और अब खुशी खुशी जा रहे हैं तो सारे अयोध्या वासी वो और खुश हुए, देखिए कि हां शायद अब हमारे श्री राम को शुभ समाचार मिल गया, इसलिए इतने खुश लग रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि कितना बड़ा कहर उनके ऊपर ढाने वाला है, कि पूरा आसमान मानो टूटकर गिर जाए उनके ऊपर, ऐसा समाचार अब वो सारे सुनने वाले हैं। तब भगवान वहां से निकलते हैं और सबसे पहले उन वो सोच रहे हैं कि इतनी खुश खबर मैं जाकर सबसे पहले अपनी माता कौशल्या को सुनाता हूं। इसकी चर्चा हम करेंगे कल, कि प्रभु श्री राम अब माता कौशल्या को यह समाचार सुनाते हैं, लक्ष्मण ये समाचार सुनते हैं, माता सीता ये समाचार सुनती हैं। तो कैसे इस प्रसंग में विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो सारे सदस्य हैं कैकेयी को छोड़कर, ये सारे सदस्य इस परिवार के, इनके अंदर एक दूसरे के प्रति का जो प्रेम है, पारिवारिक प्रेम, रामचंद्र जी को मध्य में रखते हुए माता कौशल्या का प्रेम, माता सीता का प्रेम, लक्ष्मण का प्रेम, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, सुमंत्र, इन सब का जो प्रेम केवल भगवान श्री राम को मध्य में रखते हुए, इसलिए ऐसा परिवार होना चाहिए कि खुशी मिले तो प्रभु श्री राम के सुख में, और दुख हो तो प्रभु श्री राम के दुख में। इसे कहते हैं राम भावना भावित होना। तो ये हम अयोध्या वासियों से, विशेष रूप से ये जो सदस्य हैं, इनसे सीखेंगे। तो हम जैसे जैसे अब सुनते हैं, श्रवण करते हैं कि कौशल्या ने जब सुना तो कौशल्या ने किस प्रकार से इसे, किस दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण जी, सीता ठकुरानी, इन्होंने जब सुना तो इन्होंने किस दृष्टिकोण से इसे देखा। जैसे कि प्रभु राम, सबसे पहले प्रभु श्री राम का दृष्टिकोण यहां पर दिख रहा है कि उनका दृष्टिकोण कि वो इतने प्रसन्न हुए और धन्यवाद दे रहे हैं सबसे ज्यादा उस कैकेयी को। साधारणतः कोई व्यक्ति तो कैकेयी जैसी स्त्री को वहीं पर मार देता, और कोई होता तो कह देता अपने पिता को, नहीं जाता, दिया होगा वर अपनी पत्नी को, तो मैं क्या करूं, तुम देखो, तुम्हारी पत्नी देखे, मैं क्या करूं, नहीं जाऊंगा मैं। तो साधारणतः तो ये, और इससे पहले महाराज दशरथ बोल देते कैकेयी को, तो वो तो दिया तो क्या, नहीं दूंगा अभी मैं, मुझे कुछ याद ही नहीं, तुम कौन हो। परंतु यहां पर जैसे कि उन्होंने कहा सबसे पहले कैकेयी को, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, और इसमें उन्होंने दिखाया उनके प्राण गए। सबसे ज्यादा सहानुभूति इस प्रसंग में मैं जब पढ़ रहा था तो महाराज दशरथ के प्रति हो रही थी, क्योंकि सभी, यहां तक कि कौशल्या, फिर आगे चलकर सारे अयोध्यावासी दशरथ को कोस रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये दो वर दिए थे, यहां तक कि कैकेयी सभी कोस रहे थे दशरथ मां। तो सोचिए महाराज दशरथ पर क्या बीत रही थी। कैकेयी तो खैर वो बेशर्म थी, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई कुछ भी कह रहा था उसे। परंतु यहां पर महाराज दशरथ जो इतना प्रेम प्रभु श्री राम से करे, उन्हें ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है, उनके मुख से उन्हें बोलना पड़ रहा है। तो मैं यही सोच रहा था कि महाराज दशरथ जो इस मनोभाव से गुजरे वो वास्तविक रूप में सराहनीय। इतनी बड़ी परीक्षा महाराज दशरथ की ली गई, क्यों, ताकि प्रभु श्री राम इसे स्थापित कर सकें। किसे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसे स्थापित कर सके। तो कैसे उन्होंने अपने ही पिता, अपने ही भक्त महाराज दशरथ को ऐसी कड़ी परीक्षा में डाला, और कैसे अब माता कौशल्या, सीता देवी, लक्ष्मण इत्यादि इसे लेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।